नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं
जी।
वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक पुस्तक है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी।
हाँ, बहुत अद्भुत पुस्तक है।
बिल्कुल, और इसी पुस्तक के एक अध्याय पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है अनीति के आतंक से समझौता न करें।
शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
हाँ, मतलब अन्याय और दबाव के सामने जो हमारी अपनी चेतना है उसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा वंदनीय माता जी ने समझाया है
जी।
देखिए, अक्सर हम लोग यही सोचते हैं ना कि कोई पिछड़ा है या कोई मजबूर है तो भाई बाहरी हालात ऐसे हैं या दूसरों ने दबा रखा है।
हाँ, ये आम धारणा तो है ही,
पर क्या ये पूरी सच्चाई है या कुछ और भी है इसमें? चलिए इसी को थोड़ा खुरेदते हैं आज।
बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप, और वंदनीय माता जी की ये पुस्तक इसी आम सोच को चुनौती देती है।
अच्छा,
कैसे? वो ये कहती हैं कि देखिए, बाहरी दबाव या अन्याय वो तब तक असर करता है जब तक हम अंदर से, मतलब मन से, उसे स्वीकार न कर लें, या ये कह लें कि जब तक हम उसके आगे घुटने टेकने को तैयार ना हो जाएं। अगर मन हार नहीं मानता ना, तो बाहरी ताकतें ज्यादा देर टिक नहीं पाती।
हाँ, और पुस्तक में इस बात पर बहुत जोर है कि मनुष्य कोई जड़ चीज नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है
जी।
उसके अंदर की जो चेतना है वो इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो अंदर से सहमत न हो तो कोई बाहरी ताकत उसे लंबे समय तक दबा नहीं सकती।
बिल्कुल, पुस्तक में एक पंक्ति है बहुत मार्के की, लाचारी की अनुभूति और पिछड़ेपन की स्वीकृति जहां जिस मात्रा में रहेगी, दबावों का प्रभाव उसी अनुपात में बढ़ता चलेगा।
अरे वाह, मतलब जितना हम खुद को बेचारा मानेंगे उतना ही दबाव बढ़ेगा।
हाँ, सीधा सा हिसाब है, हमारी स्वीकृति ही दबाव को ताकत देती है।
ये तो सच में बहुत सोचने वाली बात है।
और एक और पहलू है इसमें जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा।
बताइए।
वंदनीय माता जी सिर्फ अन्याय सहने वालों से ही बात नहीं कर रही, वो अन्याय करने वालों को भी चेता रही हैं।
अच्छा,
अन्याय करने वालों को?
हाँ।
वो कहती हैं कि जो लोग अनीति का आतंक फैलाते हैं,
हाँ,
उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, वो कुदरत के, सृष्टि के जो मूल नियम है उनके खिलाफ है, और जो चीज नियमों के खिलाफ है वो टिक नहीं सकती।
सही बात है।
पुस्तक में लिखा है, टिकाऊपन न्याय और औचित्य के साथ ही जुटा रहता है, मतलब टिकेगा वही जो सही है, जो न्यायपूर्ण है।
तो जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से संदेश है कि संभल जाओ।
बिल्कुल, वक्त रहते सही रास्ते पर आ जाओ, इसी में भलाई है।
तो फिर दूसरी तरफ जो लोग ये अन्याय या पिछड़ापन झेल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है इस अध्याय में?
उनके लिए संदेश बहुत साफ है और बहुत शक्तिशाली भी।
क्या?
यही कि अनीति से, अन्याय से समझौता बिल्कुल मत करो। दबाव को मन से स्वीकार मत करो, अंदर से उसके साथ सहमति मत जताओ। ये जो अंदरूनी इनकार है ना, ये बहुत जरूरी है।
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि साधन ही नहीं है मुकाबला करने के, तब क्या करें?
हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठता है, और वंदनीय माता जी इसका भी जवाब देती हैं।
अच्छा?
वो कहती हैं कि ठीक है, हो सकता है बाहरी साधन न हो लड़ने के, पर जो अंदर असहमति और अस्वीकृति की ज्योति है उसे बुझने नहीं देना है।
मतलब मन में ये भाव कि ये गलत है और मैं इसे नहीं मानता।
हाँ, बिल्कुल, ये अंदरूनी दृढ़ता, न्याय और सही बात पर टिके रहने का ये जो आग्रह है, यही अन्याय को पैर नहीं जमाने देता।
अच्छा,
ये मानसिक प्रतिरोध जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है।
और शायद जो सबसे अहम बात है इस पूरे अध्याय की वो ये पंक्ति है, मनुष्य यदि अनीति के आगे झुके नहीं तो उसे और कोई झुका नहीं सकता।
बिल्कुल, यही तो सार है। सारी बात घूम फिरकर व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति पर, उसकी अंदरूनी मजबूती पर आ जाती है।
हाँ, ऐसा लगता है कि बाहरी हालात हम पर तभी हावी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं अंदर से हिम्मत हार देते हैं या झुकने को तैयार हो जाते हैं।
सही कहा आपने, यही केंद्रीय भाव है। हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया, हमारा संकल्प, ये बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंदनीय माता जी के शब्दों में कहें तो अन्याय के सामने बस खड़े रहने का, न झुकने का जो निश्चय है, वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
जी है।
बाहरी चुनौतियां कितनी भी बड़ी दिखें, अगर हम अंदर से मजबूत हैं, अन्याय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो हम पर हावी नहीं हो सकती।
बिल्कुल सही, वंदनीय माता जी का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
हाँ, बहुत गहरा संदेश है।
और ये चर्चा हमें एक और विचार बिंदु पर छोड़ जाती है।
क्या?
कि अन्याय के खिलाफ ये जो अंदरूनी प्रतिरोध का सिद्धांत वंदनीय माता जी ने बताया है, क्या ये सिर्फ समाज में जो बड़े बड़े अन्याय दिखते हैं, या जो बाहरी दबाव हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है या फिर इसका दायरा और बड़ा है। क्या ये उन अंदरूनी रुकावटों उन सीमाओं पर भी लागू हो सकता है जिन्हें हम कई बार खुद अपने ऊपर महसूस करते हैं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर की बाधाओं पर भी उतना ही कारगर हो सकता है?
बिल्कुल, इस पर मनन किया जा सकता है।